بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے شروتاؤں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ آج کے کاریکرم کا آرمبھ ہم پوتر قرآن کے سورہ ہود کی 45ویں، 46ویں اور 47ویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سے کر رہے ہیں۔ تلاوت کا شرح پراپت کر رہے ہیں شری میر زادہ واقفی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين، قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، صدق الله العلي العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا، ہے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور نشچے ہی تیرا وعدہ سچا ہے اور تو ہی سب سے بڑا حاکم ہے۔ کہا، ہے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں، وہ تو اششٹ کرم ہے، تو ایسی چیز کا مجھ سے سوال نہ کر جس کا تجھے کوئی گیان نہیں ہے۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو اجانی لوگوں میں سے نہ ہو جا۔ کہا، ہے رب، मैं तेरी पनाह मांगता हूँ इससे कि मैं तुझसे ऐसी चीज का सवाल करूँ जिसका मुझे कोई ज्ञान नहीं, और यदि तूने मुझे क्षमा न किया और मुझ पर तूने दया न की तो मैं घाटा उठाने वालों में से हो जाऊंगा।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। आज रविवार है, खुर्दाद की 30, ज़िलक़ादा की 10 और जून की 20 तारीख। श्रोताओ, हमारा ये कार्यक्रम आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9510 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। हमें आशा है कि हमारा आज का प्रसारण भी आपको अवश्य पसंद आएगा। तो कार्यक्रम के बारे में अपने विचारों, सुझावों और प्रतिक्रियाओं से अवगत कराने के लिए हमारे पते नोट कर लें। हमारा ईमेल एड्रेस है hindi@wsirib.ir, जबकि ताज़ा समाचारों से अवगत होने के लिए हमारी वेबसाइट का पता है fasttoday.com/hi और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 00989035065492। श्रोताओ, हमारे आज के कार्यक्रम की रूपरेखा नोट कर लें। सबसे पहले आप समाचार सुनेंगे, जिसके पश्चात आप सुनेंगे कार्यक्रम अनमोल बातें, उसके पश्चात हमारा दैनिक कार्यक्रम होगा राजनीतिक चर्चा, उसके पश्चात आप सुनेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम कुरान ईश्वर या चमत्कार, और सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा आजकल। श्रोताओ, ये तो थी हमारी आज के कार्यक्रम की रूपरेखा, और अब आप कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से समाचार सुनेंगे। और अब आप रेडियो तेहरान से समाचार सुनिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। ईरान के उप विदेश मंत्री ने वियना में बल देकर कहा है कि परमाणु समझौते के पक्षों द्वारा निर्णय लेने का समय आ गया है। ईरान, तुर्की और अफगानिस्तान ने अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने में तीनों देशों के सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। भारत के प्रधानमंत्री ने ईरान के निर्वाचित राष्ट्रपति को बधाई दी है और दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत बनाए जाने की इच्छा जताई है। यमन के 17 ड्रोन विमानों ने दक्षिणी सऊदी अरब के अनेक शहरों व ठिकानों पर हमले किए हैं। और अब आप विस्तार से मोहम्मद मेहदी से समाचार सुनिए। ईरान के उप विदेश मंत्री और वार्ताकार टीम के प्रमुख ने वियना में बल देकर कहा है कि परमाणु समझौते के पक्षों द्वारा निर्णय लेने का समय आ गया है। सैयद अब्बास इराकची ने वियना में परमाणु समझौते के संयुक्त आयोग की 6th दौर की बातचीत से पहले कहा कि इस समय हम ऐसी स्थिति में हैं कि सहमति के लगभग सभी दस्तावेज तैयार हैं। उन्होंने कहा कि कुछ मामलों का समाधान हो गया है जबकि कुछ का समाधान अभी बाकी है, और अब पूरी तरह स्पष्ट है कि मतभेद के आयाम क्या हैं। ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि एक संभावित सहमति पूरी तरह स्पष्ट है और परमाणु समझौते के पक्षों को चाहिए कि वे निर्णय लें। सैयद अब्बास इराकची ने कहा कि हम वार्ता को विराम देते हैं और निर्णय लेने के लिए अपने अपने देशों की राजधानियों को लौटते हैं। उन्होंने कहा कि परमाणु समझौते के संयुक्त आयोग की आज बैठक हुई जिसमें अब तक हुई बैठकों व कामों का नतीजा निकाला जाएगा। ईरान, तुर्की और अफगानिस्तान के विदेश मंत्रियों ने अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने और क्षेत्र में मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान में तीनों देशों के सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद हनीफ अतमर और तुर्की के विदेश मंत्री मौलूद चाउश ओगलू ने तुर्की के अंताल्या नगर में होने वाली एक बैठक में अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने और मादक पदार्थों से मुकाबले में तीनों देशों के सहयोग पर बल दिया है। इस बैठक में अफगानिस्तान ईरान के ट्रांजिट सहयोग और इस देश के साथ आर्थिक सहयोग को विस्तृत करने के संबंध में समझौते भी हुए हैं। इस त्रिपक्षीय बैठक की समाप्ति पर ईरान, अफगानिस्तान और तुर्की की ओर से एक बयान भी जारी किया गया, जिसमें अफगानिस्तान में शांति स्थापना की आवश्यकता पर बल दिया गया। ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ अपने तुर्क समकक्ष मौलूद चाउश ओगलू के निमंत्रण पर तुर्की गए हैं, जहां उन्होंने अंताल्या डिप्लोमेसी फोरम की बैठक में भाग लिया और कई देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। ईरान के मानवाधिकार आयोग ने कोरोना संबंधी दवाओं व उपकरणों पर प्रतिबंध हटाने के अमेरिका के दावे पर कहा है कि इससे उसके पिछले दावों की कलई खुल गई है। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने दावा किया है कि उसने कोरोना से मुकाबले के लिए आवश्यक चिकित्सा उपकरणों व दवाओं पर से प्रतिबंध को कम कर दिया है। उसके इस दावे पर ईरान की न्यायपालिका में मानवाधिकार आयोग ने प्रतिक्रिया दिखाई है और ट्वीट करके लिखा है कि कोरोना की वजह से अब तक 82,000 ईरानियों की मौत हो चुकी है और कोरोना वायरस के फैलने के 16 महीने और ईरान द्वारा कोरोना का टीका बना लेने के बाद अमेरिका इस बात की घोषणा कर रहा है कि उसने कोरोना से मुकाबले के लिए चिकित्सा सेवाओं से ईरान पर लगे प्रतिबंधों को कम कर दिया है। ईरान के मानवाधिकार आयोग के ट्वीट में आया है कि अमेरिका ने जिन चीजों के लेन देन पर प्रतिबंध लगाए हैं उन पर जंग के जमाने में भी प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है। ईरान गैर कानूनी प्रतिबंधों को खत्म किए जाने और ईरानी राष्ट्र के खिलाफ प्रतिबंधों के जिम्मेदारों को दंडित किए जाने की मांग करता है। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने अभी हाल ही में दावा किया है कि कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए उसने ईरान से चिकित्सा सेवाओं को हासिल करने के लिए प्रतिबंधों को कम कर दिया है। ये खबर ऐसी स्थिति में सामने आ रही है जब वाशिंगटन सदैव दावा करता था कि खाद्य पदार्थों और दवाओं जैसी मानवता प्रेमी चीजें प्रतिबंधों से माफ हैं, परंतु व्यवहारिक रूप से दूसरे देशों के बैंक और दूसरे देशों की सरकारें अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान के साथ वित्तीय लेनदेन, यहां तक कि दवाओं से संबंधित मामलों को भी नहीं अंजाम देती हैं। ये समाचार आप रेडियो तेहरान से सुन रहे हैं। दुनिया भर के देशों के नेताओं और अधिकारियों की तरह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी को मुबारकबाद दी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी को हालिया राष्ट्रपति चुनाव में जीतने पर बधाई दी है। उन्होंने अपने बधाई संदेश में लिखा है कि वे इस्लामी गणतंत्र ईरान का राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर श्री रईसी को बधाई देते हैं और ईरान व भारत के ठोस संबंधों को और मजबूत बनाए जाने में उनके सहयोग के इच्छुक हैं। सीरिया के राष्ट्रपति बशार असद, लिबनान के संसद सभापति नबी बेर्री, इराकी राष्ट्रपति बरहम साले और प्रधानमंत्री मुस्तफा अल काजमी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, संयुक्त अरब इमारात के प्रमुख शेख खलीफा बिन जायद आल नहयान, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, ओमान नरेश हैसम बिन तारिक और अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलियोफ ने भी अलग अलग संदेश भेजकर ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी को मुबारकबाद दी है। भारत में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का कहना है कि भाजपा नेताओं की कथित चंदा चोरी के कारण श्रीराम मंदिर का निर्माण कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहा है। भारतीय संचार माध्यमों के अनुसार आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि 1.5 साल बाद भी श्रीराम के मंदिर का निर्माण कार्य गति नहीं पकड़ पाया है। उनका कहना था कि इसकी वजह भाजपा नेताओं की चंदा चोरी है। उन्होंने कहा कि करोड़ों राम भक्त मंदिर के लिए दान कर रहे हैं और भाजपा के नेता उसे 13 गुना माल कमा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता के अनुसार भाजपा के नेता चंदा चोरी कर रहे हैं, इसलिए राम मंदिर का निर्माण नहीं हो पा रहा है। सऊदी सूत्रों ने बताया है कि 17 यमनी ड्रोनों ने सऊदी अरब के दक्षिण में महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों व अहम प्रतिष्ठानों पर हमला किया है। सऊदी अरब की वायुसेना ने 10 यमनी ड्रोन विमानों को मार गिराने का दावा किया है। अल जजीरा टीवी ने यमनी सूत्रों के हवाले से बताया है कि इस हमले में 3 सैनिक मारे गए जबकि 50 अन्य घायल हो गए। इसी बीच मारी में फिर से लड़ाई आरंभ हो जाने की सूचना है। सूत्रों ने बताया है कि इस लड़ाई में सऊदी अरब के भाड़े के दसियों सैनिक मारे गए हैं और मारे जाने वालों में कुछ कमांडर भी शामिल हैं। अतिवादी जानियों ने अवैध जानी शासन के सैनिकों के समर्थन से मुसलमानों के पहले कबीले मस्जिद अक्सा पर एक बार फिर हमला किया। फिलिस्तीन अलियोम के अनुसार अतिवादी जानियों ने रविवार को मस्जिद अक्सा पर एक बार फिर हमला किया। जानियों ने मस्जिद के प्रांगण को हमले का निशाना बनाने के अलावा इस्लाम विरोधी नारे भी लगाए, जिसके बाद फिलिस्तीनी और जानियों के बीच भीषण झड़पें आरंभ हो गईं। मस्जिद अल अक्सा पर ऐसी हालत में हमला किया जा रहा है जब फिलिस्तीन के प्रतिरोधकर्ता गुटों ने चेतावनी दी है कि मस्जिद अल अक्सा को निशाना बनाने के नतीजे में जो हालात पैदा होंगे उसका जिम्मेदार ज़ायोनी शासन और अतिवादी ज़ायोनी होंगे। और अंत में ये समाचार कि पाकिस्तान के गृहमंत्री ने कहा है कि अफगानिस्तान की नई राजनीतिक स्थिति का सामना करने के लिए हमें हर तरह से तैयार रहना होगा। नेशनल असेंबली में अफगानिस्तान के बारे में बात करते हुए पाकिस्तान के गृहमंत्री शेख रशीद ने कहा कि इस समय अफगानिस्तान में कम से कम 38 स्थानों पर लड़ाई और झड़पें चल रही हैं। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
अनमोल बातें।
दोस्तों, कार्यक्रम अनमोल बातें की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में हाजिर हैं। मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए। दोस्तों, दुआ महान ईश्वर और इंसान के बीच संपर्क स्थापित करने का बेहतरीन माध्यम है। दुआ वास्तव में इंसान और उसके रचयिता के बीच प्रेम की अटूट रस्सी है। ये वो रस्सी है जो इंसान को उसके पालनहार से जोड़कर रखती है। बुद्धिमान इंसान कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे ये रस्सी कमजोर या टूट जाए। दुआ वो मजबूत रस्सी है जो इंसान को अपने विधाता से निकट करती है, और ये रस्सी जितना अधिक इंसान को महान ईश्वर से निकट करती जाती है उतना ही अधिक इंसान महान ईश्वर के प्रेम की मिठास का आभास अपने समूचे अस्तित्व में करने लगता है। जो इंसान महान ईश्वर के प्रेम की मिठास का आभास अपने अस्तित्व में करने लगता है वो खुद ब खुद गुनाहों पापों से दूरी करने लगता है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता हुआ समझता है कि ये गुनाह हैं जो इंसान को उसके पालनहार से दूर करते हैं। मगर जो इंसान महान ईश्वर के प्रेम का स्वाद चख चुका होता है वो उसकी अवज्ञा से दूर भागता है। दुआ मधुर संपर्क की वो अटूट रस्सी है जिसके माध्यम से इंसान अपने पालनहार से बातें करता है, और जो इंसान अपने पालनहार से बातें करने का आदि हो जाए महान ईश्वर उसके दिल में अपने प्रेम का चिराग जला देता है और वो उसी प्रकाश में चीजों को देखता है। इसलिए रवायतों में है कि मोमिन ईश्वरीय प्रकाश से देखता है। कितने भाग्यशाली वे लोग हैं जो ब्रह्मांड के प्रकाश यानी ईश्वरीय प्रकाश से लोगों व चीजों को देखते हैं, और जिसके दिल में जितना अधिक ईश्वरीय प्रकाश होगा वो चीजों और इंसानों के निहित को उतना ही अधिक साफ देखेगा।
या कोई ये सवाल कर सकता है कि महान ईश्वर ने पवित्र कुरान में कहा है कि मुझसे दुआ करो मैं कबूल करूंगा, जबकि हम दुआ करते करते थक गए हैं, परंतु मेरी दुआ कबूल ही नहीं होती है। यानी मेरी दुआ और महान ईश्वर के कहने और उसके आदेशों में एक प्रकार का विरोधाभास पाया जाता है। तो उसके जवाब में बहुत कुछ कहा जा सकता है, परंतु हम यहाँ पर बहुत ही संक्षेप में ये कहना चाहते हैं कि दुआ कबूल होने का ये मतलब नहीं है कि आप जो भी दुआ करेंगे महान ईश्वर उसे अवश्य स्वीकार ही कर लेगा, बल्कि महान ईश्वर केवल उसी दुआ को कबूल करेगा जो उसके बंदे के हक में होगी। मिसाल के तौर पर जो इंसान अपने बेटे को चाहता है उसकी हर ख्वाहिश व मांग पूरी नहीं करता, बल्कि अपने बेटे की उसी ख्वाहिश को पूरी करता है जो उसके हित में होती है। अगर कोई छोटा बच्चा अपने बाप से चाकू या बंदूक मांगने लगे तो उसका बाप कभी भी चाकू या बंदूक नहीं देगा, बच्चा चाहे कितना भी कहे या रोए, क्योंकि बाप जानता है कि ये चीजें बच्चे के लिए खतरनाक हैं और महान ईश्वर माँ बाप से न जाने कितने गुना अधिक सृष्टि से प्रेम करता है। तो वो किस प्रकार अपने बंदे की उस दुआ को कबूल करेगा जो उसके हित में नहीं है। इसलिए अगर किसी इंसान की दुआ कबूल नहीं हो रही है तो उसे सोचना चाहिए कि ये दुआ मेरे हक में नहीं है, इसलिए ये कबूल नहीं हो रही है। उसे ये सोचना चाहिए कि उसका पालनहार हर चीज को पूरी तरह जानता है कि कौन सी चीज उसके हक में है और कौन सी चीज उसके हक में नहीं है। अतः अगर कोई दुआ कबूल नहीं हो रही है तो इंसान को दुखी या निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान की दुआ तो कबूल होती है परंतु बहुत देर से कबूल होती है। उसकी एक वजह यह बताई जाती है कि जब महान ईश्वर किसी पर विशेष कृपा दृष्टि करना चाहता है और ये चाहता है कि ये बंदा हमेशा हमारे संपर्क में रहे और उससे दुआ करता रहे, तो उसकी दुआ बहुत देर में स्वीकार करता है। और महान ईश्वर से जिस इंसान का संपर्क जितना मजबूत होता है वो उतना ही गुनाहों से परहेज करता है। जो इंसान महान ईश्वर के प्रेम की मिठास का आभास कर चुका होता है वो न केवल गुनाह नहीं करता बल्कि गुनाहों से दूर भागता है। उसे गुनाहों से न केवल आनंद प्राप्त नहीं होता है बल्कि उसे गुनाहों से नफरत की दुर्गंध आती है। मिसाल के तौर पर जो इंसान बिल्कुल भी सिगरेट नहीं पीता है वो न केवल सिगरेट पीना पसंद नहीं करता बल्कि उसे सिगरेट के धुएं से भी दुर्गंध आती है, जबकि जो इंसान सिगरेट पीता है उसे सिगरेट के धुएं से भी आराम व सुकून मिलता है। बहुत से कार्यों के कुछ शिष्टाचार होते हैं, दुआ करने के भी कुछ शिष्टाचार हैं, जिनमें से एक ये है कि दुआ सच्चे दिल और पूरी निष्ठा से की जानी चाहिए। अगर कोई इंसान दिल के बजाय केवल जबान से दुआ करता है तो इस प्रकार की दुआ कभी भी कबूल नहीं होती है। और जो लोग ये कहते हैं कि उनकी दुआ कबूल नहीं होती है तो उनमें से अधिकांश लोगों का संबंध इसी प्रकार के लोगों से होता है। तो दोस्तों आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अनुमति दें, खुदा हाफिज।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
राजनीतिक चर्चा के साथ मैं अख्तर रिजवी आपकी सेवा में उपस्थित हूं। मेरा सलाम स्वीकार करें। हमारी चर्चा के विषय हैं ईरान के राष्ट्रपति चुनाव से इसराइल चिंतित, सऊदी अरब के भीतर यमन का बड़ा ड्रोन हमला और केंद्र सरकार द्वारा कश्मीरी नेताओं से चर्चा की खबर।
दिल्ली के अंदर दो दिन से जो रूमर्स चल रहे हैं।
तो पहले ईरान का 13वां राष्ट्रपति चुनाव और इसराइल की नाराजगी का विषय। जहां ईरान के 13वें राष्ट्रपति चुनाव में जनता ने जबरदस्त रूप से भाग लेकर इतिहास रच दिया, वहीं इसराइल और इसराइली मीडिया नाराज हो गए। ईरानियों ने वोट की चोट से इसराइल, साम्राज्यवादियों और रूढ़िवादी देशों को महत्वपूर्ण संदेश दिया है। बैरूत से IRIB के लिए हसन अजीमजादे की रिपोर्ट, साथी कायम रिजवी की जबानी।
ईरान में आयोजित हुए 13वें राष्ट्रपति चुनाव में जनता की भव्य उपस्थिति से ज़ायोनी शासन और उसका मीडिया साम्राज्य काफी नाराज रहा। ईरानियों ने चुनाव में भव्य रूप से भाग लेकर अपने लोकतंत्र और अपनी व्यवस्था की रक्षा की। इसी वजह से ज़ायोनी शासन बुरी तरह से नाराज हो गया है, क्योंकि ये उपस्थिति ईरान की क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूदगी को पहले से ज्यादा मजबूत बनाएगी। ज़ायोनियों, विशेषकर अमरीकियों को ये पता है कि उनके षड्यंत्रों को विफल बनाने में जनता की उपस्थिति की मुख्य भूमिका है। शुक्रवार को देश के 13वें राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए होने वाले मतदान में जनता की जबरदस्त उपस्थिति ने ज़ायोनी मीडिया के सारे समीकरणों को ध्वस्त कर दिया, जिसकी वजह से ज़ायोनी मीडिया अपने दृष्टिकोण से पीछे हटने पर मजबूर हुआ है। वास्तव में ईरान में तानाशाही नहीं है, इस देश में विभिन्न क्षेत्रों में लोकतंत्र के चिन्हों को देखा जा सकता है। लेबनान के प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया तक ने ईरान के राष्ट्रपति चुनाव के मतदान को व्यापक स्तर पर कवरेज दी और सुर्खी लगाई कि चुनाव जनता के भविष्य निर्धारण का माध्यम है। राष्ट्रपति चुनाव में जनता की भव्य उपस्थिति से ज़ायोनी शासन की चिंता इसलिए है कि उसको पता है कि राष्ट्रपति चुनाव में मिलने वाले जबरदस्त जनाधार की वजह से ईरान क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक मजबूत बनकर सामने आएगा और यह प्रतिरोध की सफलता की भूमिका बनेगा। प्रतिरोध ने हमेशा ही यह साबित किया है कि वह मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। बेरूत से IRIB के लिए हसन अजीमजादे की रिपोर्ट।
यमनी सेना और स्वयंसेवी बलों की ड्रोन यूनिट ने 17 से ज्यादा ड्रोन विमानों से दक्षिणी सऊदी अरब के कई महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया। सऊदी अरब के कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने इन हमलों की पुष्टि की है और कहा है कि कई क्षेत्रों और महत्वपूर्ण ठिकानों पर ड्रोन हमले हुए हैं। सना से IRIB के लिए अब्दुल्लाह यूसुफी की रिपोर्ट, साथी सैयद मीसम की जबानी।
17 से ज्यादा ड्रोन विमानों से दक्षिणी सऊदी अरब के कई महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया गया। सऊदी अरब के कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने देश के दक्षिणी क्षेत्रों और महत्वपूर्ण ठिकानों पर ड्रोन हमलों की सूचना दी है। सऊदी अरब की वायुसेना ने दावा किया है कि यमन के 10 ड्रोन विमानों को मार गिराया गया है। अल जजीरा चैनल ने भी यमनी सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि इन हमलों में 3 सैनिक मारे गए जबकि 50 अन्य घायल हुए। 6वें डिफेंस ऑपरेशन के समय से ही कार्रवाई की जा रही है। सऊदी पक्ष हमेशा दावा करता है कि मिसाइल मार गिराए। कार्रवाई जारी रखने का मकसद सऊदी अरब पर दबाव डालना है ताकि वो यमन पर अपने हमले बंद कर दे। सऊदी अरब जंग में बंद गली में पहुंच गया है क्योंकि हमारी सैन्य क्षमताओं में प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। रणनीतिक विकल्प ही सबसे बड़ा मुद्दा है और दुश्मनों को ये समझ लेना चाहिए कि जब दुश्मन पीछे हटेगा तभी उससे समझौता हो सकता है, क्योंकि सैन्य विकल्प दुश्मन के लिए बहुत दर्दनाक है और ये उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। कई मोर्चों पर सैन्य टकराव बढ़ना राजनीतिक वार्ता की विफलता का चिन्ह है, क्योंकि सऊदी अरब हमलों और घेराव के विकल्प पर ज्यादा ध्यान दे रहा है और ये गेंद के अपने पाले में लौटने के अर्थ में है। यमनी सेना बल देती है कि ताजा ऑपरेशन, विशेषकर सऊदी अरब के अंदर नए ऑपरेशन शुरू होंगे। सेना की सफलता सऊदी इमाराती गठबंधन की लज्जाजनक पराजय का चिन्ह है और अगर ईश्वर ने चाहा तो अगले कुछ दिनों में हम यमनी सेना और स्वयंसेवी बलों के मारिब शहर में दाखिल होने के साक्षी होंगे। ये हमारे लिए एक राष्ट्रीय जंग है और यमनी सेना और स्वयंसेवी बल के जवान देश के हर क्षेत्र से हमलावरों को भगाकर ही चैन की सांस लेंगे। इसी के साथ मारिब में भी झड़पें शुरू हो गई हैं क्योंकि सैन्य सूत्रों ने कई मोर्चों पर दसियों एजेंटों के मारे जाने की सूचना दी है। यमनी सेना की इन कार्रवाइयों में सऊदी समर्थक लड़ाकों को भारी माली और जानी नुकसान पहुंचा है। एजेंट मीडिया ने भी स्वीकार किया है कि कई वरिष्ठ कमांडर इन कार्रवाइयों में मारे गए हैं। अब्दुल्ला यूसुफी, IRIB न्यूज, सना।
और अब रुख करते हैं भारत का।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
भारत की केंद्र सरकार ने कश्मीरी नेताओं से वार्ता का इशारा दिया है। जब से केंद्र ने कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किया है तब से लेकर ये कश्मीरी नेताओं के साथ केंद्र सरकार की पहली मुलाकात होगी। और भी अन्य विषयों के साथ श्रीनगर से हमारे साथी सिप्ते मोहम्मद हसन।
भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कश्मीर समस्या के हवाले से तमाम मेनस्ट्रीम दलों के साथ एक बैठक इस माह की 24 तारीख को नई दिल्ली में आयोजित होनी है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP को पहली बार न्योता दिया गया है। यहाँ ये बात उल्लेखनीय है कि कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद ये पहला अवसर है कि भारतीय प्रधानमंत्री ने तमाम दलों को इन्वाइट किया हो। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ने कहा है कि वो अपने नेताओं के साथ वार्ता करेंगे और उसके बाद ही वो इस हवाले से कोई निर्णय लेंगे। परंतु जो गुपकार अलायंस का प्रवक्ता है महमूद यूसुफ तारगामी, उन्होंने कहा है कि हमारा ये मानना है कि हमें वार्ता के द्वार खुले रखने होंगे और वार्ता से ही हमें सब कुछ लाभ हासिल होगा। उन्होंने कहा कि कश्मीर का विशेष दर्जा जो खत्म किया गया है उसको अगर बहाल करना है तो हमें नई दिल्ली को एंगेज करना होगा।
दिल्ली के अंदर दो दिन से जो रूमर्स चल रहे हैं कि शायद 24 तारीख को मुल्क के प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर जो है वो जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बात करना चाहते हैं, तो हम जहां एक अच्छा कदम है वहां हम ये कहते हैं कि ये चीजें हम उनको पिछले कितने सालों से ये कह रहे थे कि यही कांग्रेस ने आवाज दी थी कि आप लोग बातचीत करो और यहाँ पे फिर से स्टेट को बहाल करो और यहाँ के इलेक्शन करवाओ।
इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के महासचिव डॉक्टर मुस्तफा कमाल ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच डिप्लोमेटिक स्तर पर जो वार्ता हो रही है और जिस तरह से अब इनके दरमियान आइस मेल्ट हो रहा है, हमारा ये मानना है कि ये दोनों देशों के हित में है। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए कहा,
ये जहां तक सफारती ताल्लुकात हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, उन ताल्लुकात में काफी देर से जमूद आ गया था और दोनों ममालिक जो हैं आपस में जो बातें इख्तलाफ या मसले होते थे तीसरे मुल्क की सालिसी से वो बातें हो रही थी। ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान अपने सफारती ताल्लुकात उस्तवार करें और अपने मामलात जो हैं एक हमसाय ममालिक के नाते, दोनों एक दूसरे के हमसाए हैं, वो बेहतर तरीके से निपटाए जा सकते हैं घर के अंदर ही।
इस बीच जम्मू कश्मीर में जहां हिंसक घटनाओं का क्रम जारी है वहीं पर एक अच्छे संकेत यह है कि COVID-19 के वबाई सूरत हाल पर नियंत्रण पाया गया है और अब पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या भी बहुत कम हो रही है और मरने वालों की संख्या में भी बहुत कमी आई है। प्रशासन का कहना है कि उन्होंने जो भी नियम और एडवाइजरी लोगों के लिए दिए हैं हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो उस पर अमल करें, तभी इस समस्या से हम बाहर आ सकते हैं। सिप्ते मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर।
और इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। دوستوں آپ سن رہے ہیں ریڈیو تہران کی ہندی سیوا. ہماری آج کی اس سبھا کے انت میں آپ سنیں گے کارکرم آج کل, کنتو اس سے پہلے پرستت ہے آتما کو شانتی پردان کرنے والا کارکرم قرآن ایشوری چمتکار.
قرآن ایشوری چمتکار.
پری شروتاؤ کارکرم قرآن ایشوری چمتکار کی ایک انی کڑی لے کر آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں, آشا ہے پسند کریں گے. آئیے پہلے سورہ اسراء کی آیت نمبر 107 کی تلاوت سنیں.
قل آمنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا.
ہے پیغمبر, ویرودھیوں سے کہہ دیجئے کہ تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ, نشچت روپ سے اس سے پورو جن لوگوں کو گیان دیا گیا تھا ان کے سمکش جب کبھی ایشوری آیتوں کی تلاوت ہوتی تھی تو وہ نتمستک ہوتے ہوئے دھرتی پر گر پڑتے تھے.
پچھلے کارکرم میں ہم نے کہا کہ ایشور نے قرآن مجید کو ایک ہی بار میں نہیں بلکہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیغمبری کے ان کے 23 ورشیہ کال کے دوران کرمشہ بھیجا ہے, جس پر ویرودھی آپتی کرتے ہوئے کہتے تھے کہ چونکہ پورا قرآن ایک بار میں نہیں آیا ہے اس لیے ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے.
یہ آیت کہتی ہے کہ اس پرکار کے ترکہین لوگوں سے کہنا چاہیے کہ ایشور کو تمہارے ایمان کی آوشکتا نہیں ہے کہ تم اس پرکار کے بہانے بنا رہے ہو. جن کے پاس گیان ہے یا جو پچھلی آسمانی کتابوں کا گیان رکھتے ہیں وہ قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھ کر اس کی ستیتا کو سمجھ جاتے ہیں. وہ قرآن کی مہانتا کے سمکش اس پرکار سے نتمستک ہو جاتے ہیں کہ کیول ان کا ماتھا ہی نہیں بلکہ ان کی ٹھڈی اور پورا چہرہ دھرتی پر ٹک جاتا ہے.
اس آیت سے ہم نے سیکھا کہ لوگوں کا ایمان یا کفر قرآن مجید کی ستیتا میں کسی بھی پرکار کا پربھاؤ نہیں رکھتا. یدی سنسار کے سبھی لوگ قرآن کا انکار کر دیں تو بھی یہ ایسا ہی ہے جیسے سبھی لوگ اپنی آنکھیں بند کر کے سوریہ کا انکار کر دیں.
واستوک گیان وہ ہے جو منشیہ کو ستیہ کے سمکش نتمستک کرے, نہ یہ کہ مانو گیان میں وردھی سے وہ دھارمک و آدھیاتمک واستوکتاؤں کا انکار کر دے.
آئیے اب سورہ اسراء کی آیت نمبر 108 اور 109 کی تلاوت سنیں.
وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا.
اور وہ کہتے ہیں کہ ہر برائی سے پوتر ہے ہمارا پالنہار, نشچت روپ سے ہمارے پالنہار کا وچن پورا ہو کر رہے گا, اور وہ روتے ہوئے ٹھڈیوں کے بل گر پڑتے ہیں اور قرآن کی آیتوں کی تلاوت ان کی ونمرتا میں وردھی کر دیتی ہے.
چونکہ تورات اور انجیل میں انتم پیغمبر کے آنے کی بھوشیہ وانی کی گئی تھی, اتا آسمانی کتاب رکھنے والے وہ لوگ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے کہتے تھے کہ ایشور نے اپنے وچن کو پورا کر دیا ہے, اتا وہ ایشور کا گنگان کرتے تھے.
سوابھاوک ہے کہ اس پرکار کے لوگ ستیہ کے پرتی نتمستک رہتے. وہ قرآن مجید کی جتنی ادھک تلاوت کرتے اتنا ہی ان کا ہردے ایشور کے پرتی ونمر ہوتا جاتا اور وہ روتے اور گڑ گڑاتے ہوئے ایشور کا سجدہ کرتے. قرآن مجید نے ان کی اس دشا کی سراہنا کی ہے.
ان آیتوں سے ہم نے سیکھا کہ قرآن مجید کی تلاوت ستیہ سویکار کرنے کے لیے تتپر ہردیوں پر ایسا پربھاؤ ڈالتی ہے کہ وہ بربس ہی ایشور کے گنگان اس کے سمکش نتمستک ہونے اور رونے پر وش ہو جاتے ہیں اور ان کے یہ آنسو ایشور تتھا اس کے کتھن کی پہچان اور مہانتا کے کارن ہوتے ہیں۔
قرآن مجید کی تلاوت منش کو سدیو ہی پریپورنتا کی اور لے جاتی ہے اور ایشور کے پرتی ونمر بناتی ہے جو سبھی پریپورنتاؤں کا سروت ہے۔
اپاسنا وشیش کر سجدے کی استھتی میں رونا اتینت مولیوان ہے۔
آئیے اب سورہ اسراء کی آیت نمبر 110 کی تلاوت سنیں۔
قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا۔
ہے پیغمبر، کہہ دیجئے کہ تم اسے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس پرکار سے بھی پکارو کے سب سے اچھے نام اسی کے ہیں، اور آپ اپنی نماز کو نہ تو ادھک اونچی آواز میں پڑھیے اور نہ ہی بہت دھیمی آواز میں پڑھیے، بلکہ ان دونوں کے بیچ کا مارگ اپنائیے۔
اتہاس میں ورنت ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد الحرام میں دعا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یا اللہ و یا رحمان، ارتھات ہے ایشور اور ہے سب سے بڑے دیالو۔ کچھ لوگ سوچتے تھے کہ وہ دو الگ الگ ایشوروں کو پکارتے ہیں، جن میں سے ایک کا نام اللہ ہے اور دوسرے کا رحمان۔ اسی سمے یہ آیت آئی جس میں کہا گیا ہے کہ دونوں نام ایک ہی ایشور کے ہیں، اور ان دو ناموں کے اترکت بھی ایشور کے انیک نام اور گن ہیں اور اس کی پریپورنتا کے کسی نہ کسی آیام کو درشاتے ہیں۔ اتہ تم لوگ ایشور کو ان میں سے کسی بھی نام سے پکار سکتے ہو۔
اسی پرکار جب بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونچی آواز میں نماز پڑھتے تھے تو انیک ایشور وادی اونچی آواز میں کچھ شعر پڑھ کر ان کا دھیان بٹانے کا پریاس کرتے تھے، اور جب وہ دھیمی آواز میں نماز پڑھتے تھے تو ان کے ساتھ ہی نہیں سن پاتے تھے۔ اسی کارن اس آیت نے انہیں اونچی اور دھیمی آواز کے بیچ کا مارگ اپنانے کی سفارش کی، اور سیدھانتک روپ سے اسلام کرم تتھا اپاسنا کی شیلی اور اس کی گنوتا پر دھیان دیتا ہے، وشیش کر نماز پر جسے وشیش شیلی میں پڑھا جاتا ہے۔
اس آیت سے ہم نے سیکھا کہ سب سے اچھے نام اور گن جن میں سندیش پایا جاتا ہے ایشور کے ہیں، اور ایشور تتھا اس کے ناموں کے بیچ سمپورن تال میل پایا جاتا ہے۔ کنتو آج کے سنسار میں بہت سے لوگوں کے ویکتتو اور ان کے نام کے بیچ ویرودھابھاس ہوتا ہے۔
اسلام ایک مدھ مارگی و سنتولن کا دھرم ہے، نماز پڑھتے سمے بھی آواز میں سنتولن ہونا چاہیے۔
آئیے اب سورہ اسراء کی آیت نمبر 111 کی تلاوت سنیں۔
وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔
اور ہے پیغمبر، کہہ دیجئے کہ سمست پرشنسائیں ایشور کے لیے ہیں جس نے نہ کسی کو اپنی سنتان بنایا ہے، اور نہ تو اس کے راجیہ میں کوئی اس کا سہبھاگی ہے، اور نہ ہی کوئی اس کی کمزوری کے کارن اس کا سنرکشک ہے، اور اس پرکار اس کی مہانتا کی گھوشنا کرتے رہو جس پرکار کرنا چاہیے۔
قرآن مجید کے کچھ سورے ایشور کے گنگان سے آرمبھ ہوتے ہیں۔ یہ سورہ ارتھات سورہ اسراء بھی ایشور کے گنگان سے آرمبھ ہوا تھا اور اس کے گنگان سے ہی سماپت ہو رہا ہے، البتہ ایسا گنگان جو اسے ہر پرکار کی کمی سے دور رکھتا ہو، کیونکہ یہ آیت ایشور کو ہر پرکار کے سنرکشک، سہبھاگی، جیون ساتھی اور سنتان سے پوتر بتاتے ہوئے کہتی ہے کہ ایشور کسی بھی پرکار کی کمزوری اور اکشمتا سے دور ہے۔ سوبھاوک روپ سے اس پرکار کا ایشور مہان سمجھے جانے یوگیہ ہے۔
اس آیت سے ہم نے سیکھا کہ الحمدللہ ارتھات سمست پرشنسائیں ایشور کے لیے ہیں، سبحان اللہ ارتھات ایشور ہر پرکار کی کمی سے دور ہے، اور اللہ اکبر ارتھات ایشور سب سے مہان ہے جیسے شبدوں کو دہراتے رہنا سبھی پیغمبروں و ایمان والوں کے لیے ایشوری سفارش ہے۔
ایشور کو کسی بھی وستو کی تنک بھی آوشکتا نہیں ہے، وہ ماتا پتا اور سنتان سے آوشکتا مکت ہے، اتا اسے سادھارن منشیوں کی بھانتی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اسے ان باتوں سے پوتر سمجھنا چاہیے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ ریڈیو تہران سچائی اور ان سب کی آواز جن کی آواز کوئی نہیں سناتا۔ تازہ سماچاروں اور سٹیک سمیکشاؤں کے لیے ہم سے جڑیے اور ہمیشہ جڑے رہیے۔ اور اب ریڈیو تہران کی ہندی سیوا کا اگلا کاریکرم۔ آج کل
دوستو، کاریکرم آج کل میں آپ کا سواگت ہے۔ آج ہم کووڈ 19 مہاماری کے پربھاؤ کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ مریم مہر دادی اور محمد علی گومی کا سلام سویکار کیجیے۔
پچھلے سال دنیا میں جب کورونا وائرس پھیلنا شروع ہوا تو سبھی ہی حیران تھے اور اس کی روک تھام کے لیے کوارنٹین کا سجھاؤ دیا گیا۔ یہ بیماری ایسی استھتی میں پھیلنا شروع ہوئی جب کوئی بھی اس طرح کی ویاپک مہاماری کے لیے تیار نہیں تھا۔ لاک ڈاؤن یا کوارنٹین کے وقت سننے، دیکھنے اور پڑھنے یوگیہ پرستاؤں کا بازار گرم ہو گیا۔ سوشل میڈیا پر لوگ ایک دوسرے کو فلموں، کتابوں اور سنگیت کے بارے میں سجھاؤ دینے لگے تاکہ اس طرح اپنے گھروں میں قید لوگ یہ مشکل وقت گزار سکیں۔
اس بیچ کلاکاروں نے بھی مورچہ سنبھالا اور نئے طریقوں سے اپنی کلا کا پردرشن کیا۔ اگر کورونا نہیں ہوتا تو گائک اور سنگیتکار کسی شہر یا ہال میں کنسرٹ کا آیوجن کر رہے ہوتے، اس لیے انہوں نے سوشل میڈیا کا سہارا لیا تاکہ لوگوں تک پہنچ سکیں اور لاک ڈاؤن میں گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا منورنجن کر سکیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کلاکاروں نے اپنے گھروں کی کھڑکیوں اور چھتوں سے سنگیت پیش کیا تاکہ لوگ ان کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر سکیں۔ اس پرکار ان کی آواز اور ان کا سنگیت پوری دنیا تک پہنچا۔
لیکن یہ پوری کہانی نہیں ہے۔ کورونا مہاماری کے کارن سنگیت اتپادوں کی بکری میں ایک تہائی کی گراوٹ آئی، جبکہ ڈیجیٹل اتپادوں کی بکری میں لگ بھگ 11% کی گراوٹ آئی۔ ثبوتوں سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے سنگیت سننے کے طریقوں میں بدلاؤ آیا ہے۔ ایک آن لائن سنگیت کمپنی کی رپورٹ کے مطابق مہاماری کے دوران درشکوں نے ٹی وی اور اسمارٹ اپکرنوں کا استعمال کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ سنگیت سنا۔
دوستوں، رپورٹوں کے انوسار اس شیتر میں مہاماری کا اتنا ادھک پربھاؤ ہوا ہے کہ سننے والوں کی عادتیں بھی بدل گئی ہیں۔ ادھارن کے لیے جو شیلی چھٹیوں کے دوران سب سے ادھک لوک پریہ ہوتی تھی، اب وہ درشکوں کی روزانہ کی خوراک بن گئی ہے۔ دوسرے شبدوں میں، شانتی پردان کرنے والے سنگیت کی شیلی لوگوں کے بیچ پہلے سے ادھک لوک پریہ ہو گئی ہے۔ لوگوں کے ایک استھان پر اکٹھا ہونے پر ویاپک پابندیوں کے بعد کلاکار اب ٹویٹر، انسٹاگرام اور سوشل میڈیا کے انیہ پلیٹ فارموں کے مادھیم سے گھروں میں موجود اپنے پرشنسکوں کے ساتھ سیدھا سمپرک ساتھ رہے ہیں۔ اس طرح سے پیسے کمانے کے لیے نئے طریقے بھی سامنے آئے ہیں، جس میں کلاکاروں کے چینلوں کی سدستا گرہن کرنا بھی شامل ہے۔
ادھارن کے طور پر چین میں ایک آن لائن سنگیت کاریکرم تیار کیا گیا، جس میں 80% سنگیتکاروں کی آئے 50% سے زیادہ بڑھی، جبکہ کچھ کلاکاروں کا تو کہنا ہے کہ ان کی آئے 100% بڑھی۔ اس طرح سنگیتکاروں، پرکاشکوں اور نرماتاؤں کے لیے درشکوں کے ساتھ سنواد کرنے کے ایسے نئے طریقے آئے میں وردھی کرنے اور کلاکاروں کی آجیوکا میں سدھار کرنے اور سنگیت ادیوگ کو جیوت رکھنے کے دیرگھکالک طریقے ہو سکتے ہیں۔ دنیا کے ان حصوں میں بھی ऐसे मंच तैयार किए गए जहां कलाकार संगीत पेश करने के अलावा दर्शकों के साथ संवाद करते हैं और उनके लिए अपनी पसंद का संगीत पेश करते हैं। हालांकि वो इस तरह से पैसा नहीं कमाते, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से रॉयल्टी और वित्तीय सहायता का आनंद उठाते हैं।
इसके अलावा उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि के साथ ही उपभोग की आदतों में भी बदलाव आया है। कुछ उपभोक्ता घर पर ही साझा सेवाओं का उपयोग करते हैं, जबकि कुछ दूसरों ने वित्तीय दबाव के कारण अपनी सदस्यता रद्द कर दी है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कुछ व्यवसाय जो इस संकट के दौरान दोहरी सेवा प्रदान करते हैं, जब तक कि आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं होता है, संगीत के प्रेमियों से संपर्क बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं और अपने उपभोक्ताओं को अस्थायी रूप से निःशुल्क सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।
कोरोना काल में एक दूसरा बिंदु जिसके हम साक्षी रहे हैं, वो कई संगीतकारों का सिंगल ट्रैक के उत्पादन और सोशल मीडिया पर उसे रिलीज करने की ओर रुझान है। जैसा कि आप जानते हैं कि इतिहास में प्रौद्योगिकी और ऑडियो रिकॉर्डिंग ने किसी न किसी तरह संगीत उत्पादन की मात्रा निर्धारित की है। उदाहरण के लिए, एक ऐसा वक्त था जब एक टर्न टेबल पेज होता था जिसमें केवल एक ही गीत उस पेज में रिकॉर्ड हो सकता था। उसके बाद टेप बाजार में आया जिसमें एक घंटे से 90 मिनट तक की रिकॉर्डिंग पेश की जाती थी। उसके बाद संगीत प्रस्तुतियों को सीडी में जारी किया जाने लगा जिसकी अवधि 35 से 40 मिनट होती थी और उसके बाद डेटा तक बात पहुंच गई। यही वो समय है जब आप कलाकार से कह सकते हैं कि आप अपने उत्पादों को तुरंत और 3 मिनट से भी कम समय में बिना किसी चिंता के अपने उपभोक्ता तक पहुँचा सकते हैं।
हालांकि कुछ देशों में वित्तीय सहायता से संगीत उद्योग में नई जान पड़ गई। UMG जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और ऑनलाइन संगीत वितरण के दिग्गजों और ग्राहकों द्वारा वित्तीय सहायता के समर्थन से कई डेवलपर्स ने ऐसा तंत्र विकसित किया है कि जिसके जरिए उपभोक्ता संगीतकारों की सीधे वित्तीय सहायता कर सकते हैं। दूसरे उदाहरणों में कठिन परिस्थितियों में बिना किसी कॉपीराइट के प्रीपेड सेवा करना है।
सरकारों ने भी संकट में नुकसान उठाने वाले संगीतकारों और कलाकारों को आर्थिक पैकेज दिए हैं जो विभिन्न रूपों में हैं। ये आर्थिक पैकेज सिर्फ संगीत उद्योग से विशेष नहीं है, बल्कि मीडिया, कला और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में नुकसान उठाने वालों को भी ऐसे ही पैकेज दिए गए हैं। ईरानी संगीतकार व प्रोड्यूसर अर्दवान जाफरियान, जो यूनेस्को के निदेशक मंडल के सदस्य भी हैं, कोरोना संकट में संगीत की दुनिया की आर्थिक बदहाली के बारे में कहते हैं, इस स्थिति में सरकार की एक जिम्मेदारी यह है कि वो संगीत के गुरुओं और विशेषज्ञों का समर्थन करे जिन्होंने अपनी वर्कशॉप और शैक्षिक केंद्रों के बंद होने के कारण अपनी आजीविका गंवा दी है। कोरोना वायरस के फैलाव ने दुनिया को हैरान कर दिया, जिसका सामना करने के लिए कोई भी देश तैयार नहीं था। इसलिए अल्पकालिक नीतियों के रूप में नुकसान उठाने वाले सांस्कृतिक और कलात्मक उद्योगों की मदद की जानी चाहिए। मेरा मानना है कि इस समर्थन के लिए शुरुआती बिंदु वो संगीत विद्यालय और सहायक उद्योग हैं जो लाइव संगीत पेश करने से वंचित रह गए हैं।
इन प्रयासों के अलावा जो संगीत के क्षेत्र की स्थिति की बहाली में मदद करते हैं, विशेषज्ञों ने भविष्यवाणी की है कि कोरोना काल के बाद संगीत में बड़ा उछाल आएगा। उनका कहना है कि इस समय संगीत गतिविधियां भले थम गई हों, लेकिन असल में कलाकारों को अच्छा अवसर मिल गया है जिसके बाद वे नई रचनाएं पेश कर सकते हैं और बेहतरी के बारे में सोच सकते हैं।
कोरोना के बाद कला और खास तौर पर संगीत एक रिनेसांस का अनुभव करेगा, क्योंकि पिछले एक साल के दौरान कलाकारों ने कंसर्ट के आयोजन के बारे में काफी सोच विचार किया है और अधिक काम और विचार के कारण उन्होंने उत्पादन पर कम ध्यान दिया है। हो सकता है इस दौरान दर्शकों के बारे में कम शोध किया गया हो, लेकिन कोरोना काल में कई कलाकारों का अपने प्रशंसकों के साथ बेहतर संपर्क रहा है और इस संपर्क की उनके पसंदीदा संगीत को पहचानने में अच्छी भूमिका रही है। इसलिए भविष्य में उनके काम की गुणवत्ता बेहतर होगी, जिसका संगीत की दुनिया की वित्तीय स्थिति पर अच्छा असर पड़ेगा। हालांकि इस दौरान कुछ कलाकारों ने अपना पेशा भी बदल दिया है, हो सकता है कि वे संगीत की दुनिया में वापस न लौटें, लेकिन जो कलाकार पेशेवराना नजर रखते हैं निश्चित रूप से वे अपने काम को अधिक गंभीरता से आगे बढ़ाएंगे।
संगीत की दुनिया में सकारात्मक प्रयासों के बावजूद पोस्ट कोरोना काल में लाइव संगीत और कॉन्सर्ट के आयोजनों में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कुछ मौकों पर दर्शकों का भरोसा फिर से हासिल करना कठिन होगा। एक अध्ययन के अनुसार टीकाकरण की प्रक्रिया और भविष्य में हर्ड इम्यूनिटी की शुभ सूचना के बावजूद 50% लोगों का कहना है कि वे प्रतिबंध हटने के बाद भी कॉन्सर्ट या सिनेमा घरों में नहीं जाएंगे। इसका कलाकारों के जीवन पर जरूर असर पड़ेगा, क्योंकि उनकी 2/3 आमदनी इसी तरीके से होती है।
आखिरी बिंदु जो हमें नहीं भूलना चाहिए वो ये है कि डॉक्टरों का मानना है कि आशा और शांति प्रदान करने वाला संगीत सुनकर कोरोना महामारी से पैदा होने वाली निराशा और अवसाद का मुकाबला किया जा सकता है और शरीर की क्षमता को मजबूत बनाया जा सकता है। ये मत भूलिए कि संगीत सुनना और किसी भी तरह के तनाव से बचना शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूती प्रदान करता है और आपको हर तरह की बीमारी के मुकाबले की शक्ति देता है। इसलिए इस कला का आनंद लीजिए और अपनी आत्मा और शरीर को सुखद नोट्स का मेजबान बनाइए। दोस्तों, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, इजाजत दें।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा और प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचारों का सारांश। ईरान के उप विदेश मंत्री ने वियना में बल देकर कहा है कि परमाणु समझौते के पक्षों द्वारा निर्णय लेने का समय आ गया है। ईरान, तुर्की और अफगानिस्तान ने अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने में तीनों देशों के सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। भारत के प्रधानमंत्री ने ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को बधाई दी है और दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत बनाए जाने की इच्छा जताई है। और यमन के 17 ड्रोन विमानों ने दक्षिणी सऊदी अरब के अनेक शहरों व ठिकानों पर हमले किए हैं। दोस्तों, हमें आशा है कि हमारा यह प्रसारण भी आपको सदा की भांति पसंद आया होगा। कार्यक्रमों के बारे में अपने विचारों से हमें अवश्य अवगत कराइएगा। तो इसी के साथ अख्तर अब्बास को अनुमति दें। खुदा हाफिज़।